بسم اللہ الرحمن الرحیم، درود و سلام ہو محمد و آل محمد پر. ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی پروگرام انداز جہاں لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. امید ہے کہ آپ جہاں بھی ہوں گے انشاءاللہ ہمیشہ کی طرح آج بھی بخیر و عافیت ہوں گے. ہمارے پروگرام کا موضوع ہے پاکستان میں ڈرون حملے اور نیٹو سپلائی کی بندش اور اس کے حق میں دھرنے. اس موضوع پر گفتگو ہوگی معزز مہمانوں سے، مگر مختصر سے وقفے کے بعد. جہاں ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ڈرون حملے کے خلاف پاکستان تحریک انصاف اور جماعت اسلامی اور بعض دیگر چھوٹی جماعتوں اور خود باثر شخصیات کے حامیوں کی طرف سے پاکستان کے مختلف علاقوں میں، خاص طور پر صوبہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے جنوبی علاقوں میں، نیٹو سپلائی کو روکنے کے حق میں اور ڈرون حملے بند کیے جانے کے حق میں دھرنے دیے جا رہے ہیں، اور دھرنے کا آج ساتواں دن ہے. اس صورتحال پر پاکستان میں ایک بحث چھڑ گئی کہ موجودہ صورتحال میں یہ دھرنا کتنا پاکستان کے مفادات کا تحفظ کر سکے گا، اور اگر دھرنا دینا ہی تھا پاکستان تحریک انصاف کو تو خود خیبر پختونخوا میں اس کی حکومت ہے، حکومتی سطح پر اس کا اعلان کیوں نہیں کیا گیا، اور انتظامی حکم کیوں نہیں جاری کیا گیا، وغیرہ وغیرہ. اور اس سلسلے میں الزامات اور جوابی الزامات کا بھی سلسلہ جاری ہے. ہم اس پر گفتگو کریں گے، مگر ہمارے ساتھیوں نے اسی صورتحال پر ایک رپورٹ تیار کی ہے. پہلے اسے دیکھتے ہیں، پھر آپ کی خدمت میں اور معزز مہمانوں کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں.
پاکستان میں ڈرون حملوں کا معاملہ لا ینحل بنا ہوا ہے، اور اب تک اس معاملے کا کوئی تصفیہ نہیں ہو سکا ہے. حال ہی میں پاکستان نے اپنی فوج میں ڈرون طیارے شامل کیے، اور ماہرین بار بار کہہ چکے ہیں کہ فوج امریکی ڈرون طیاروں کو مار گرانے کی صلاحیت رکھتی ہے، لیکن اس کے باوجود ڈرون حملوں کا جاری رہنا یہ بتاتا ہے کہ حکومت اور فوج اس سلسلے میں ٹھوس قدم نہیں اٹھا پا رہی ہے. اس کی وجوہات کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں ہیں. قیاس آرائیوں میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ڈرون حملوں کے سلسلے میں یقینی طور پر کوئی خفیہ معاہدہ ہے، جبکہ حکومت اس سے انکاری ہے. بہرحال زمینی سچائی یہ ہے کہ ڈرون حملے مسلسل ہو رہے ہیں اور اس میں لوگ مارے بھی جا رہے ہیں. اتنا ہی نہیں، حال ہی میں قبائلی علاقوں کے باہر بھی ایک ڈرون حملہ ہوا جو اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. ڈرون حملوں پر مختلف حلقوں کی جانب سے مخالفت ظاہر کی جا رہی ہے، جبکہ تحریک انصاف پارٹی اس سلسلے میں احتجاجی دھرنا دے رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام ڈرون حملوں کے خلاف جاری احتجاجی تحریک کا ایک ہفتہ پورا ہو چکا ہے، اور آٹھویں دن بھی دھرنا جاری ہے. جمعے کو دھرنا کیمپ میں وزیرستان، باجوڑ، مہمند ایجنسی، کرم ایجنسی اور خیبر ایجنسی سے تعلق رکھنے والے سیاسی و غیر سیاسی عمائدین نے بھی شرکت کی. قبائلی عمائدین کیمپ میں سارا دن موجود رہے، اور اظہار یکجہتی کہتے ہوئے ڈرون حملوں کے خلاف احتجاج کیا گیا، اور پارٹی کارکنوں نے خیبر پختونخوا کے چار اضلاع پشاور، کوہاٹ، نوشہرہ اور ڈیرہ اسماعیل خان میں پانچ مقامات پر دھرنا جاری رکھا. نیٹو سپلائی روکنے کے لیے تحریک انصاف کی حکمت عملی کے نتیجے میں خیبر پختونخوا سے نیٹو سپلائی مکمل طور پر بند ہے، اور گزشتہ ایک ہفتے میں کوئی بھی گاڑی اس علاقے سے نہیں گزر سکی. دوسری جانب پشاور میں تحریک انصاف کے دھرنے کے خلاف دھرنا دیا گیا. آل پاکستان ٹرانسپورٹرز، ٹرالرز اینڈ ٹرک ایسوسی ایشن نے کاروبار خراب ہونے کے خلاف احتجاج کیا. مظاہرین کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے دھرنے کی وجہ سے ان کے کاروبار کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے. رنگ روڈ سے گزرنے والی گاڑیوں کو روک کر سیل توڑے جاتے ہیں، ڈرائیوروں کو زد و کوب کیا جاتا ہے. دراصل لاہور میں وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ دھرنے دینے سے ڈرون حملے بند نہیں ہوں گے، دھرنے دینے والے دھرنے دیں، ہمیں ملک چلانا ہے. لاہور میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ غیر ملکی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ہمیں اپنے پیروں پر کھڑا ہونا ہوگا، کیونکہ معاشی غلامی کے خاتمے تک غیر ملکی مداخلت بند نہیں ہو سکتی. اس کی واضح مثال ایران ہے، جس نے اجتماعی قومی غلطیاں نہ کرتے ہوئے اپنی تیل کی دولت کا عقل مندی سے استعمال کیا، اور امریکہ سے اپنی مرضی کی شرائط منوائیں. خواجہ سعد رفیق کا کہنا تھا کہ موجودہ حکومت بھی ڈرون حملوں کی اتنی ہی مخالف ہے جتنے دھرنا دینے والے ہیں، لیکن اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ دھرنے دینے سے ڈرون حملے بند نہیں ہوں گے. دھرنے والے دھرنا دیں، ہمیں ملک چلانا ہے. اس معاملے پر بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کو غیر ملکی امداد لیتے وقت بھی غیرت کے بارے میں فکر کرنی چاہیے. پاکستان کے اندر کچھ حلقے ایسے بھی ہیں جو عمران خان کی تحریک کو مناسب اور کامیاب تحریک قرار دے رہے ہیں.
جناظرین آپ نے ہمارے ساتھیوں کی تیار کردہ یہ رپورٹ ملاحظہ فرمائی, اور سیدھے چلتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو جہاں پر موجود ہیں پاکستان کے سینئر اور سرکردہ صحافی و تجزیہ نگار محترمہ فوزیہ شاہد. السلام علیکم. جی محترمہ فوزیہ شاہد صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
جی نوازش ہے. سب سے پہلا جو سوال سامنے آتا ہے وہ یہ کہ آج 7 دن کا عرصہ گزر چکا ہے اور دھرنے جاری ہیں, تو کیا اس طرح کے دھرنے سے کچھ امریکہ پر دباؤ ڈالا جا سکتا ہے ڈرون حملے بند کرنے کے تعلق سے؟
دیکھیے پہلے تو میرا خیال ہے کہ ڈرون حملوں کے حوالے سے ہمیں بالکل تھوڑا سا واضح ہونا پڑے گا. کوئی بھی اس وقت ملکی سیاسی جماعت جو ہے وہ ڈرون حملوں کی حمایت نہیں کر رہی, اور اگر ہم یہ کہیں کہ ہماری جو عسکری قوت ہے اس کی جانب سے بھی ڈرون حملوں کی حمایت نہیں کی جا رہی, لیکن اس کے باوجود یہ بالکل درست ہے کہ اس حوالے سے جس طرح امریکہ کلیم کر رہا ہے کہیں نہ کہیں یہ معاہدہ ضرور ہے, وہ ریٹن ہے یا ان ریٹن ہے, لیکن حکومت کوئی بھی تھی چاہے وہ جنرل مشرف کی تھی چاہے وہ پچھلی حکومت تھی, یہ ایک ان کو باقاعدہ طور پہ اگر یہ کہا جائے کہ ان کو اجازت دی گئی ہے کسی بھی شکل میں تو یہ غلط نہیں ہوگا, کیونکہ جس طرح وہ پاکستانی سرحدوں میں بھی اب آ کے ڈرون انہوں نے کیا ہے, جیسے ٹل کا ایک واقعہ ہوا ہے سامنے آیا ہے, تو میرا خیال ہے کہ یہ تو بات اگر یہ کہا جائے کہ کسی جگہ اجازت کے بغیر کر رہے ہیں تو میں ماننے کو تیار نہیں ہوں, لیکن یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسی بات ہو چکی ہے, اور اگر نہ ہوئی ہوتی تو یقیناً پاکستان کے پاس جو آپشنز تھے, پاکستان کے پاس سیکیورٹی کونسل کے آپشنز موجود تھے کہ جو وائلیشن پاکستان کی سرحدوں کی جا رہی ہے, تو میرا خیال ہے وہ کر سکتے تھے. بات ساری یہ ہے کہ کیا وہ معاہدہ جو ہے اس میں یہ ڈرون حملے جو ہیں اس کا کیا نتیجہ ثابت ہو رہا ہے. میں یہ سمجھتی ہوں ڈرون حملوں کی کوئی بھی حمایت نہیں کر سکتا, خاص طور پہ جب بے گناہ لوگ مارے جاتے ہیں, لیکن جہاں تک اہداف کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کا حصول بھی ہمیں بہت کامیاب دکھائی دیتا ہے. بہت اہم جو اگر یہ کہا جائے کہ طالبان کے جو سرکردہ رہنما تھے وہ اس میں ہلاک ہو چکے ہیں, اس کے علاوہ اور بھی اہداف جو ہیں حاصل ہوئے ہیں, لیکن اس کے باوجود وہی بات جو پچھلی حکومت بھی بار بار کہتی رہی کہ ڈرون حملوں کا استعمال جو ہے وہ ہمارا حق ہونا چاہیے, ہمیں ٹیکنالوجی دی جانی چاہیے, وہی بات ابھی بھی حکومت کہہ رہی ہے. اور جب ہم یہ موجودہ حکومت کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمیں یہ مد نظر ضرور رکھنا چاہیے کہ یہ وہ جماعت ہے جو پچھلی دفعہ اپوزیشن میں تھی, اور ان کا چونکہ یہ دعویٰ رہا کہ حکومت کی کہیں بھی یہ نرمی ہے جو ابھی تک ڈرون حملے نہیں بند ہوئے, لیکن اب جب وہ خود برسر اقتدار ہیں تو ان کو بھی بالکل جو عالمی سطح پہ جو کسی طرح بھی کسی ملک سے معاہدہ ہوتا ہے اس کی پاسداری میں وہ بھی اس کی پابندی کر رہے ہیں. اب دوسری جانب آ جاتے ہیں جو بہت اہم اس وقت پاکستان میں, جس طرح ابھی آپ نے بات کی پچھلی اتوار کو شروع کیا گیا تھا دھرنے کا آغاز کیا گیا تھا, اور بنیادی طور پہ یہ کہا گیا کہ وہ ڈرون کے خلاف ہے, لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ ان دھرنوں کے دوران بھی ڈرون کا حملہ ہوا, اور بلکہ وہ حملہ جو ہے اس کو ہم زیادہ اس لیے زیادہ ہم سخت قرار دے سکتے ہیں کہ وہ جو قبائلی علاقے ہیں ان سے آگے ہٹ کے اس علاقے میں ہوا ہے جو جہاں کوئی اس طرح کی صورتحال نہیں ہے, دہشت گردی کے حوالے سے بھی تھوڑا سا بہتر علاقہ کہا جاتا ہے. مقصد کہنے کا صرف یہ ہے کہ کیا وہ پریشر بلڈ کر سکے. ابھی تک جو صورتحال ہمیں دکھائی دیتی ہے بلا شبہ اس میں جس طرح آپ بھی ذکر کر رہے تھے, اپنی رپورٹ میں بھی آپ کا ذکر آیا ہے کہ اب اس میں خواتین, اور کل جو گزشتہ روز اس میں بچوں نے بھی اس میں شرکت کی, اسکول اور کچھ پرائیویٹ اسکولس کی گورنمنٹ اسکولس کے بچوں نے بھی شرکت کی, وہ ایک پریشر بلڈ کیا. لیکن جو جس طرح یہ ایک اس کا آغاز کیا گیا ہے, اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے, وہ مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں اپنے لیے مشکلات پیدا کر لے گی, کیونکہ جس طرح انہیں کھلی چھٹی دے دی گی, اور بہت سے ایسے واقعات ہوئے ہیں کہ جس میں انہوں نے ڈرائیوروں کو مارا ہے, یا جو کچھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ سامان کو جو ہے انہوں نے جو جس طرح چیک کرتے ہوئے کچھ ادھر ادھر بھی کیا گیا ہے, بے شمار چیزیں سامنے آ رہی ہیں, تو یہ بھی خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے. جس طرح آپ نے یہ کہا کہ قبائلی اکابرین نے وہاں شرکت کی, لیکن ہماری جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ بھی شریک ہو سکتے ہیں جو ملک میں امن و امان کی صورتحال پیدا نہیں ہونے دیتے, یا ملک میں امن و امان کی صورتحال
بہت شکریہ
آپ کر رہے ہیں, وہ چاہے وہ جنوبی وزیرستان کی ہم بات کریں یا دوسرے شمالی وزیرستان کی بات کریں, وہاں سے آنے والے لوگ ہیں, کیونکہ तमाम के जो शक्ल व सूरत हुलिया जो है वो एक सा है, आप उसमें किसी तरह तफरीक पैदा नहीं कर सकते कि कौन लोग आपकी सफ़ों में आ रहे हैं, कौन लोग जो है इसमें अमन अमान की सूरत हाल को तबाह भी कर सकते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि ये एक कौमी पॉलिसी है और कौमी सतह पे ही इसका बिल्कुल जायज़ा लिया जाना चाहिए। ड्रोन हमले जो हैं ख़त्म ज़रूर होने चाहिए। अमेरिका हो या किसी भी मुल्क हो, ये हक नहीं है कि दूसरे मुल्क की सरहदों की पामाली करे, उसमें मदाखलत करे, या वहाँ अपने भी कोई अगर दुश्मन है तो उनके हसूल के लिए या उनको टारगेट करने के लिए उनकी सरहदों की पामाली करे। लेकिन ये है कि मैं ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि जो तरीक़ाकार इख्तियार किया गया है वो आने वाले वक्त में तकलीफ दे भी हो सकता है, और हो सकता है कि जो पाकिस्तान हुकूमत की जानिब से दावा किया जा रहा है कि गालबा मुज़ाकरात के हवाले से या आगे बढ़ने का, तो उसको भी किसी न किसी तरह वो असर
जी
हो
मोहतरमा
सकता है।
बहुत शुक्रिया।
मेरा ख्याल है कि बहुत संजीदगी का वक्त है, संजीदगी के साथ बैठना होगा, और तहरीक इंसाफ के खुद भी रानमा गालबन थोड़ा सा वो जज्बाती अंदाज में, क्योंकि नौजवान उनके साथ एक बड़ी तादाद में है, तो फैसला करते हुए शायद वो थोड़ा सा जज्बाती अंदाज इख्तियार कर लेते हैं। उनके लिए भी जब वो जायज़ा लेंगे तो उनके लिए मुश्किल होगा। आपने जिस तरह भी बात की थी कि ये जो सवाल पैदा हो रहा है कि हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा तहरीक इंसाफ की है लेकिन हुकूमती सतह पर क्यों नहीं किया जा रहा, ये वही बात है कि जो आने वाले वक्त मैं समझती हूँ कि हुकूमत के लिए जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसके लिए बहुत ज़्यादा मसला पैदा कर सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि इसको आगे बढ़ने से उसको यकीनन उसको मुज़ाकरात की तरफ आना चाहिए, हुकूमत के साथ बैठना चाहिए, पार्लियामेंट में वो मौजूद हैं, पार्लियामेंट में डिस्कस करना चाहिए, इजलास आने वाला है। मेरे ख्याल में ये रास्ते ज़्यादा बेहतर होते हैं बजाय इसके कि आप लोगों को सड़क पे इकट्ठा कर लें, फिर आपको खुद भी समय में ना आए कि इस जो मोब है या जो भी इकट्ठे लोग हो गए उनको किस तरह आपने वापस भेजना है। क्योंकि आप जब इस इंतहा पर पहुँचेंगे, इस वक्त तहरीक इंसाफ ने जो आखिरी इकदाम था वो पहले कर दिया है और अभी शायद वो पीछे की तरफ आएंगे जो पहला इकदाम करना चाहिए।
बहुत शुक्रिया। मैं फिर हाजिर हूँ आपकी खिदमत में। चलते हैं लंदन स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं सियासी उमूर के माहिर अहमद ज़ुबैरी साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब।
अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
बहुत शुक्रिया ज़ुबैरी साहब, आप क्या फरमाते हैं कि इस तरह के धरनों का कितना फ़ायदा होगा और पाकिस्तान के, जैसा कि अभी आपने मोहतरमा फौजिया शाही साहब की गुफ्तगू सुनी कि बहुत बड़ा हलका एक ऐसा भी है पाकिस्तान में जो इस तरह के धरनों के ख़िलाफ़ है, आप क्या कहेंगे?
भाई धरनों के ख़िलाफ़ भी लोग होंगे और धरनों की हमायत में हुआ करते, कभी किसी कंसेंसस पे 100% लोग राज़ी नहीं हुआ करते। लोग अपने मफादात को देखते हैं कि उनके मफादात की क्या बैकग्राउंड क्या है और उससे हमें क्या मिलेगा, कितनी बख्शीश मिलेगी, कितने हमें वो मिलेंगी इमरात मिलेंगी, इसका इंसार होता है उनके फैसलों पे। लोगों के जो फैसले होते हैं इन चीज़ों के पे इंसार किया जाता है। अव्वलन तो अगर ये पाकिस्तान या अफगानिस्तान न होता, मैं सवाल पूछता हूँ फौजिया साहिबा से, अगर किसी बड़े मुल्क पर इस तरह हमला किया जाता है, अमेरिका करता, तो क्या इसको टॉलरेट किया जाता? द आंसर इज़ नो। अगर पाकिस्तान इस तरह अमेरिका में या बरतानिया में, यहाँ भी हमारे टेररिस्ट छुपे हुए हैं, उन पर हमला करता, अगर पाकिस्तान करता तो क्या यही सूरत हाल रहती? एंड द आंसर डेफिनेटली इज़ नॉट। तो ये क्या वजह है कि एक चूंकि बहुत बड़ा मुल्क है, वो जो मर्जी करे अपनी मर्जी से करे, उसकी तो राय आमा जो है वो अपने लिए अमवार कर लेते हैं, लेकिन पाकिस्तान गरीब। वजह ये है कि पाकिस्तान हमेशा दस्ते नगर रहा है। जब से पाकिस्तान सीटों और सेंटों का मेंबर बना था उस वक्त से हमने हाथ फैलाए हैं, हमें फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के वो पुराने कुछ ठीकरे दे के हमें तो खुश कर दिया गया है। हमारे जितने भी लोग हैं, हुक्मरान हैं या उनके बच्चे हैं या उनके जो क्राउनीज है, अबाउट 4,000-5,000 फैमिलीज, उनकी जायदादें अमेरिका और बरतानिया और फ्रांस में हैं, उनके उनके जनाब बैंक अकाउंट यहाँ हैं, उनके कुछ ना कुछ मफादात इन ममालिक से मिले हुए, तो वो क्यों? और फिर यह कि मोस्ट ऑफ देम आर सेकुलर माइंडेड, तो वो क्यों अमेरिका की मुखालफत करें? मुशर्रफ साहब ने पहले तो कहा था कि हमने नहीं इजाज़त दी, बाद में कह दिया कि इजाज़त दी, बाद की हुकूमतें आई तो कहने लगी जी हमने कोई इजाज़त नहीं है अमेरिका का। ये सब मिली भगत है, इस मिली भगत को सिर्फ धरनों से, मैं समझता हूँ कि इस धरने का भी कोई खातर ख्वाह फ़ायदा नहीं हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं से बुनियाद शुरू की जाती है। आप महल भी नहीं बना सकते जब तक कि वो नीचे ज़मीन पर या ज़मीन के अंदर ना गाड़ें। ये एक छोटा सा कदम है। क्या वजह है कि आज दिन तक अमेरिका ने कभी कोई मैली आंख उठा के क्यूबा की तरफ या नॉर्थ कोरिया की तरफ नहीं देखा? ये उसकी वजह यह है कि वो लोग इनके गुलाम नहीं हैं, हम गुलाम हैं। हमारी तो 90% 80% जो मसनूआत आप देखेंगे, आप इस्लामाबाद में जाए, मैं भी आया हूँ वापस, हर छाप पर लिखा होता है इम्पोर्टेड गुड्स इम्पोर्टेड गुड्स इम्पोर्टेड गुड्स इम्पोर्टेड गुड्स। इसमें क्या है? वो ये है कि हमारे ब्रांड वॉश हो चुके हैं कि बाहर की चीज़ें जिन ख्वाब वो पाकिस्तान में बनती हैं उन पर मोर अमेरिका की या बरतानिया की या कहीं की लग जाए, ये हमारे जहन भी गुलाम हो चुके हैं। आज की तो खबर ये है कि जनाब पाकिस्तान अमेरिकन एम्बेसी जो पाकिस्तान इस्लामाबाद में है वहाँ से ये सारी प्लानिंग होती थी, अगरचे आज से 4-5 साल पहले मैरियट होटल से ये प्लानिंग सारी हुआ करती थी और मैरियट होटल को गालबन इसी वजह से तबाह कर दिया गया था। और ये बड़ा एक अजीब सा सिलसिला है कि हमारे में से गद्दार हैं जो उनको बताते हैं कि एक मकान में 2 आदमी, मैं भी जाता हूँ पाकिस्तान में, हमारे नेक्स्ट डोर नेबर का किसी को नहीं पता था कि कौन है, वो फिर वहाँ एक चिप छोड़ आते हैं, उस चिप की मदद से वो ड्रोन वहाँ जाते हैं और हमले करते हैं। ये जो लोग कहते हैं कि अवाम नहीं मर रहे, गालबन या तो वो बेवकूफ़ हैं या हमें बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते हैं या उनको साइकेट्रिक ट्रीटमेंट चाहिए कि उनको पता नहीं चलता का, सामने लाशें पड़ी हुई हैं, सामने एक एक बॉडीज के 50-50 टुकड़े बन के फैले हुए हैं, और फिर ये कहते हैं कि जी ये बच्चे 4 साल के बच्चे 10 साल के बच्चे वो टेररिस्ट किस तरह हो सकते हैं? और ये टेररिस्ट हैं भी क्या? अमेरिका की तो पैदावार हैं ये, भट्टू साहब के ज़माने से लेकर ये तारीख ने वाजा कर दिया है कि ये वो लोग थे जिनकी मदद से रशिया को अफगानिस्तान से निकाला गया। और अब ये है जी कि हमारी बिल्ली हमारी से म्याओ, अब वो लोग जो अच्छे थे यूनिपावर अमेरिका को यूनिपावर बनाने के लिए, वही लोग बुरे हो गए हैं। मैं नहीं समझता कि उनमें से सारे बुरे हैं, कुछ बुरे तो हर माशरे में, क्या अमेरिका में बुरे लोग नहीं है? क्या यहाँ आई आर
जी जबरदस्त, मैं फिर हाजिर हूँ आपके
लंदन में मुकीम हूँ
जी, मैं फिर हाजिर हूँ, चलते हैं कराची जी, बहुत शुक्रिया, मैं फिर हाजिर हूँ, चलते हैं कराची स्टूडियो जहाँ पर मौजूद हैं सीनियर साहबी इरफान अली साहब। अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी शुक्रिया इरफान अली साहब, आप देखें कि एक सवाल जो इस वक्त धरने के ताल्लुक से उठाया जा रहा है कि धरना जो है वो पीटीआई वाले कर रहे हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी सूबे खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत है और जहां से नेटो सप्लाई गुजरती है, तो हुकूमत ने हुकूमती हुक्म क्यों नहीं जारी किया, यानी सूबाई हुकूमत ने, और उसके अफराद जो है इस तरह का जो है वो धरना किए हुए हैं लेकिन हुकूमत खामोश बैठी हुई है, ये एक बड़ा सवाल है, आप क्या कहेंगे इस पर?
देखें इसकी एक तवील तारीख है, आप अगर जो है ये देखें कि ये सारा मसला जो है अमेरिका के साथ जो मौजूदा ताल्लुका हैं ये परवेज मुशर्रफ साहब के हुकूमत के दौर में हुए थे, और परवेज मुशर्रफ साहब जो है 12 अक्टूबर 1999 को जो है एक फौजी बगावत के नतीजे में चीफ आवामी साहब भी बने थे और चीफ एग्जीक्यूटिव भी बन गए थे, जब उन्होंने अपने जो हुकूमत बनाई थी जो, तो उसमें जो वजीर खारजा थे, पहले वजीर खारजा उनको कौन थे? अब्दुल सत्तार थे। अब्दुल सत्तार साहब का जो सियासी ताल्लुक है वो आप जान लें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जी हाँ इसी इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से उनका ताल्लुक था, और 9/11 उन्हीं की वजारत खारजा के दौर में हुआ था। 9/11 के बाद जब पाकिस्तान ने अपनी ये पॉलिसी बनाई थी कि वो अमरीका के जो है सारे मुतालबात मान लेगा, जो 7 थे शायद, तो जो है वो इमरान खान साहब ये याद कर लें कि उसके बाद एक रेफरेंडम हुआ था परवेज मुशर्रफ साहब की हिमायत के लिए कि परवेज मुशर्रफ साहब को मान लिया जाए, तो उसमें इमरान खान साहब जो है वो परवेज मुशर्रफ के हामी थे उस रेफरेंडम के अंदर जो 9/11
जी। चलते हैं इस्लामाबाद स्टूडियो, मोहतरमा आप क्या फरमाएंगे इस ताल्लुक से, यही जो हुकूमत, जाहिर है कि आपने उसकी तरफ इशारा किया था कि हुकूमत ने यानी सूबाई हुकूमत ने क्यों हुकूमती फरमान के तहत ये इकदाम नहीं किया और नेटो सप्लाई के लिए रास्ता बंद कर देती, उसके हामियों को उसने क्यों अपने हामियों को खुली छूट दे रखी?
देखिए ये एक बिल्कुल वाजे है कि हुकूमत जो है वो बहरहाल उसको भी पता है कि वो पाबंद होती है, और अगर आप अवामी सतह पे कोई बात करते हैं तो वो पाबंदी नहीं आती। अगर आपने इंटरनेशनली नॉर्म्स को हम देखते हैं, जिस तरह हम बात कर रहे थे और अभी, इसमें बिल्कुल वाजे आ रहा है कि कहीं ना कहीं मायदा ज़रूर है। अब वो जो मायदा मौजूद है उसको कोई भी हुकूमत होगी उसके लिए लाजिम है कि वो पासदारी करें।
माफ़ कीजिएगा, मैं आपने पहले भी मायदे की बात की थी मोहतरमा,
जो हुकूमती सतह पे है वो उसमें पासदारी निभा रही है, लेकिन अभी बड़ी अहम बात कर रहे थे और मेरा ख्याल है कि ये हमें बहुत संजीदगी से देखना चाहिए। इस वक्त जिस तरह भी उन्होंने अब्दुल सत्तार की बात की है, उसके बाद हम ये देखते हैं कि मुशर्रफ दौर में जो वजीर खारजा थे महमूद कसूरी साहब, वो इस वक्त तरीके इंसाफ में हैं। इसके बाद हम देखते हैं शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, जो बहुत आगे उस वक्त ज़ाहिर है कि वजारत खारजा के हवाले से उनका जो भी मकाम था सबको पता है, वो इस वक्त तरीके इंसाफ में है। और ये दोनों वज़रा खारजा या अब्दुल सत्तार या ये वो वज़रा खारजा हैं जिनके इल्म में है कि ये क्या वो मायदा है, पाकिस्तान कितना पासदारी उसके कर सकता है, कहाँ तक वो जा सकता है। मेरा ख्याल है कि शायद मियां नवाज शरीफ इतना वाकिफ़ नहीं होंगे कि जितना वो शाह महमूद कुरैशी वाकिफ़ होंगे, या जितना उसके बाद हम महमूद कसूरी को देखते हैं कि वो जितना वाकिफ़ होंगे। अब अगर ये खुद ही अगर ये जो भी किसी तरह की अंडरस्टैंडिंग है तो ये दो साहिबान जो हैं ये उसमें यकीनन शरीक होंगे। अब अगर ये इस तरह का दावा करें तो मेरा ख्याल है कि मुझे तो ये आवाम को धोखा देने की आई वॉच की बात दिखाई देती है। और मैं ये जैसे पहले मैंने बात की है, मुझे ये ख़दशा है कि ये अपने लिए ही जो है वो फिर एक दफ़ा अमन व अमान की सूरत हाल भी पैदा कर सकते।
मोहतरमा, मैं आपसे ही पूछना चाहूँगा
बात है
जी,
कि जब हमने
वाला
चेक पोस्ट का वाक़या हुआ था और 7 माह तक तकरीबन ये आपकी कंटेनर्स जो हैं रोक दिए गए थे, नेटो सप्लाई रोक दी गई थी, और अभी जो हमारे सामने फैक्ट्स आ रहे हैं उसमें बड़ी अजीब से फैक्ट्स आ रहे हैं, और उसमें ये कहा जा रहा है कि जो 2014 अब एक माह की बात रह गई है, दिसंबर जो है कल शुरू हो रहा है, तो 2014 में जो नेटो की वापसी का एक सिलसिला शुरू हो गया है उसमें नेटो का जो सामान है वहाँ से जा रहा है, और ये भी बात सामने आ रही है कि बुनियादी ज़रूरत की कुछ चीज़ें जो पहुँचाई जा रही हैं। क्या नेटो सप्लाई रोक के इस किस्म की जो सूरत हाल पैदा की जा रही है, हम उसको दोबारा उनको मौका दे रहे हैं कि वो वहीं ठहरें? ये भी एक बहुत से सवालात पैदा हो रहे हैं। फिर इसके साथ साथ अभी आपने अपने जिस तरह इंट्रो में बात की है, आपकी रिपोर्ट में भी ये जिक्र आया है कि दूसरी जानब इस वक्त जो है पाकिस्तान में जब से ये आपकी नेटो सप्लाई का या अफगान ट्रांजिट ट्रेड की बात है, बहुत बड़ा जो हमारा ट्रांसपोर्टर है उसमें शामिल है। अभी ये अगर कहा जाए कि हज़ारों लोग जो हैं वो इससे रोज़गार से वाबस्ता हैं तो वो गलत नहीं है। जो हर रोज़ जो है वो आपको अफ़गानिस्तान को जो ट्रांजिट ट्रेड के हवाले से जा रहे हैं, ट्रक जा रहे हैं, वो है। फिर हमने एक और जो चीज़ है, मेरा ख्याल है कि जब हम कंटेनर्स की बात करते हैं तो यहाँ मुझे लगता है कि तहरीक इंसाफ से कहीं एक गलती ये हो गई, और ये आने वाला वक्त किसी वक्त संजीदा भी हो सकता है। माजी में हमने ये देखा है कि बहुत से कंटेनर्स को मुख्तलिफ औकात में आग लगती रही, उसका सामान लूटा जाता रहा, और वो जो सामान था वो किस तरह कहाँ फैल गया, उसमें असला भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फैला, उसमें दूसरा सामान भी बहुत ज़्यादा फैला। मुझे ये जो इस वक्त आप मुकम्मल तौर पे छुट्टी दे रहे हैं और सरपरस्ती जो है हुकूमत की तरफ से, यकीनन खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से ये ऐलान नहीं है, लेकिन सरपरस्ती कौन कर रहा है? खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कर रही है। अगर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की सरपरस्ती में कहीं लूट मार का सामान होता है, कहीं कोई ऐसा ऐसी सूरत हाल पैदा हो जाती है, तो मेरा ख्याल है कि ये सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा के लिए नहीं बल्कि पूरे मुल्क के लिए होगा। और अभी बहुत जब आप बात कर रहे थे तो मैं बिल्कुल आपको वाजे कर दूं कि इस वक्त जो कंटेनर्स रोकने की बात हो रही है, ये आपको बहुत हैरत होगी कि पंजाब में भी तहरीक इंसाफ ने एक बड़ी अपनी जो है वर्थ बनाई है, लेकिन पंजाब में इस तरह सपोर्ट नहीं किया जा रहा। इसी के साथ साथ हम अगर दूसरे सूबों का भी देखते हैं, कराची में भी उस तरह सपोर्ट नहीं किया जा रहा, और ये तमाम चीज़ें भी देखना पड़ेंगी कि खैबर पख्तूनख्वा और इस इलाके के जो लोग हैं उसमें, और जिस तरह भी बात कर रहे थे कि कोई कबायली जो अमायदीन हैं वो उसमें जो उन्होंने शिरकत की है, तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में ये चीज़ बिल्कुल इसको समझा जा रहा है कि ये तरीक़ाकार बेहतर नहीं है। और दूसरी जानिब जो है ज़ाहिर है कि एक मज़ाकरात का आता है, क्या आप इतनी ताकत में हैं कि आप उनको ड्रोन को मार गिराएं? और आपने जिस तरह भी एक बहुत पहले आप सवाल कर रहे थे और आपने दो दफ़ा इस सवाल को दोहराया है कि क्या वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो है, जबकि वहाँ उसकी हुकूमत है, हुकूमती सतह पे क्यों नहीं फैसला हुआ? तो आप यकीनन जानते होंगे कि खैबर पख्तूनख्वा के बजट में तकरीबन 30 से 35% जो है वो आपने इस जो राहदारी से जो आपको रकम मिलेगी वो आपने बजट में उसमें मद में रखा हुआ है, और जाहिर है कि 30-35% किसी भी सूबे का बजट बहुत बड़ी अमाउंट होता है। तो अगर हुकूमती सतह पे होता तो यकीनन वो फौरी तौर पे वो आपके आमदनी का सिलसिला कट जाता है, लेकिन अभी भी ये जो इस तरह के कंटेनर्स रोकने की बात की जा रही है, خیبر پختونخوا کو یہ معاشی طور پہ بھی کسی وقت
بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ
اس کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. میرا خیال ہے کہ تحریک انصاف کو میں پھر دوبارہ یہ کہوں گی, میں چونکہ سمجھتی ہوں کہ پارلیمنٹ میں ان ایشوز پہ زیادہ بہتر طور پہ بات ہونی چاہیے, پارلیمنٹ میں اور باقی جماعتوں کو بھی اگر تحریک انصاف اس میں بہت سنجیدہ ہے اس کو کنوینس کرنا چاہیے, باقی بڑی سیاسی جماعتوں کو بھی.
میں پھر حاضر ہوں گا آپ کی خدمت میں محترمہ نوازش. عرفان علی صاحب, گفتگو ہماری منقطع ہو گئی تھی اور ظاہر ہے کہ آپ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ تحریک انصاف پر یہ الزامات, عمران خان پر یہ الزامات عائد ہو رہے ہیں کہ انہوں نے امریکہ سے ڈالر لیے ہیں. خود مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے اور خود حکومتی جماعت جو اس وقت حکمراں جماعت ہے اس کے بھی عہدیداران یہ بات کہہ رہے ہیں, اور دوسری طرف جو ہے وہ اس کے حامی جو ہیں وہ ڈرون حملے کے خلاف یا یوں کہا جائے کہ امریکہ کے خلاف جو ہے وہ دھرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف دونوں ہاتھ میں لڈو لینے کی کوشش کرے؟
دیکھیں مطلب جو ہے تحریک انصاف کا پچھلے پروگرام میں بھی بتا چکا تھا کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ امریکی سفیر, امریکی تھنک ٹینکس اور جو امریکی سینیٹرز ہیں ان سے ملاقاتیں کر چکے ہیں, امریکہ کا دورہ بھی کر چکے ہیں اور جو ہے اس میں انہوں نے بہت ساری باتیں وہاں پر کہی ہیں. اور اگر آپ جو دیکھیں کارنیگی میں ایک دفعہ ان کو بلایا گیا تھا, کارنیگی انڈومنٹ فار انٹرنیشنل پیس, تو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ مطلب جو امریکہ اس طریقے سے جنگ نہ لڑے, اس طریقے سے لڑے. مطلب یہ وہ چیز نہیں ہو رہی ہے کہ مطلب جو ہمارے پاس جو ہے نا سیاست دانوں کی وہ اقسام ہے کہ مطلب یہ کام آپ نے ان کو کیوں دے رکھا ہے, یہ کام ہم سے کیوں نہیں لیتے ہیں اور ہماری اتنی سی بات مان لیں. اور یہ سہولت امریکہ نے کمیونسٹوں کو بھی دی تھی جو کمیونسٹ ڈسیڈنٹ تھے جن کو سی آئی اے نے خریدا تھا, تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ اگر ہم کھلے عام تمہاری سپورٹ کریں گے تو جو ہے ہمارے لوگ تو ناراض ہو جائیں گے, کہہ دیں گے کہ تمہیں خرید لیا گیا ہے. تو سی آئی اے نے ان کو یہ اجازت دی تھی, امریکہ نے ان کو, امریکی حکومت نے ان کو یہ اجازت دی تھی کہ ہاں بھلے آپ جو ہے کچھ کچھ جو ہے چیزیں ہمارے خلاف بھی بولتے رہے. یہ میں ایک ضمناً بات کر رہا تھا جو آپ جو نیٹو سپلائی کے حوالے سے جیسے میں بات کر رہا تھا, تو فوزیہ شاہد صاحبہ نے بہت اچھے طریقے سے اس کو کنٹینیو کر کے جو میں باتیں کہنا چاہ رہا تھا کہ جو شاہ محمود قریشی صاحب ہیں اور جو یہ صاحب ہیں خورشید محمود قصوری صاحب ہیں, یہ وہ تھے ان کے وزرائے خارجہ اور یہی جو ہے اسی ڈرون پہ. اور شاہ محمود قریشی صاحب تو اس حد تک کہ جو پارلیمنٹ کو جو ہے کیری لوگر بل کے فضائل جو ہے اس کے فوائد جو ہے اس پر باقاعدہ لیکچر دے چکے تھے. پارلیمنٹ جب اس کو ایگری نہیں کر رہی تھی تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بھی حصہ ہوگا, پارلیمنٹ کو بھی ملے گا, اس قسم کی باتیں انہوں نے کی تھی وہاں پر. تو یہ جو چیزیں ہیں وہ ایک طرف ہے, جو آپ ان کی بات کر رہے ہیں تو ایف آئی آر تک کاٹ دی جا چکی ہے خیبر پختونخوا میں نامعلوم افراد کے خلاف. اور آپ کو پتا ہے کہ ایف آئی آر میں اگر جو ہے خدا نخواستہ حکومت تبدیل ہوگی تو وہ جو تحریک انصاف کے جو بیچارے کارکنان ہیں انہیں شامل تفتیش اگلی حکومت کر لے گی, اگلی انتظامیہ کر لے گی. اور ناصر خان درانی جو آئی جی خیبر پختونخوا ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے کہ ایف آئی آر کے اندر جو ہے ہم وہ نام شامل نہیں کر سکتے جو شیریں مزاری صاحبہ نے جو بتایا تھا کہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر اور جو سی آئی اے کے جو اسٹیشن چیف ہے ان کے نام, اور انہوں نے کہا تھا کہ چالان میں شامل کیے جا سکتے اگر شواہد ہوں. اور ناصر خان درانی صاحب کو جو یہاں پر عمران خان صاحب نے بڑے فخر سے کروایا ہے اور وہ ایک ٹی وی پروگرام میں کہہ چکے ہیں کہ ناصر خان صاحب جو ہیں وہ ان کے اپنے آدمی ہیں, یعنی کہ ان کی مرضی سے تعینات ہوئے, پہلے آئی جی خیبر پختونخوا کوئی اور تھے. تو یہ جو چیز ہے تو پھر ہم یہ ماننا پڑے گا کہ جو ہے ریمنڈ ڈیوس والے سارے قضیے کے اندر پیپلز پارٹی اور صدر زرداری کو کریڈٹ جاتا ہے کہ ان کو پکڑا بھی گیا تھا, ان کو سزا بھی دی گئی تھی, اور بدقسمتی سے سعودی عرب کے کہنے پر ریمنڈ ڈیوس کو آزاد کر دیا گیا تھا. اگر ایک ریمنڈ ڈیوس کو باقاعدہ پاکستان کے قانون کے مطابق سزا دے دی جاتی تو آج یہ ایشو نہ ہوتا. تو مسئلہ یہ کہ اس سے زیادہ اگلا قدم جو ہے پیپلز پارٹی کی حکومت میں اٹھایا جا چکا ہے. سلالہ کے علاوہ بھی ایک دفعہ جو ہے امریکہ نے پاکستانی فوجی شہید کر ڈالے تھے, اس پر پاکستان سے کسی نے بھی جو ہے یہ جرت محسوس نہیں کی, جرت نہیں کی تھی کہ اس کو زیر بحث لایا جائے. تو برائن کلافلی جو انٹرنیشنل جو ایکسپرٹ ہیں اس ملٹری ایشوز کے بھی اور انٹرنیشنل افیئرز کے بھی, خود سابق فوجی ہے, انہوں نے نیشن اخبار میں نے ان کا آرٹیکل پڑھا تھا, انہوں نے کہا تھا کہ بھائی یہ تو جو ہے سیدھی سیدھی جو انٹرنیشنل لا کی وائلیشن ہے, اس پہ تو آپ جائیں یو این USC کو جو ہے اپروچ کر رہے ہیں. لیکن جو ہے پاکستان میں اس وقت جو امریکہ میں پاکستان کے سفیر تھے حسین حقانی صاحب, ان کے دور میں یہ جو ہے مسئلہ زیادہ پھیلا تھا, 4,500 ویزے ان کو دے دیے گئے تھے. بہرحال اس چیز کو کنٹین کر دیا گیا تھا. میں آپ کو دوسری ایک بات بتانا چاہوں گا نیٹو سپلائی کے حوالے سے کہ محرم کی چھٹیوں کی وجہ سے یہاں سے ایوریج جو ہے 12-13 ٹرک گزرا کرتی تھی, اور NLC جو اس کی سپلائی کر رہی ہوتی ہے اس نے جو ہے خود اپنے جو ان کے جو ڈپو ہوتے ہیں اس کے اندر جو ہے یہ ٹرک کھڑے کر رکھے تھے. تو اب جو ہے صرف 4 اضلاع کے اندر جو ہے تحریک انصاف احتجاج کر رہی ہے, اور جو ہے سوابی ہے, ڈیرہ اسماعیل خان ہے, کوہاٹ ہے, ये जो है हयातआबाद पिशावर का टोल प्लाजा है, तो क्या इसके एक तो पहले के नेटो सप्लाई खुद पहले से कम है जो उस पर अटैक होते उसकी वजह से भी कम है, और दूसरी बात यह कि उन्होंने ये एक दफा फिर जो है ड्रोन अटैक सेटल्ड एरिया में करके बता दिया कि हम आपकी बात नहीं मानते। अब बात यह कि इमरान खान साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम अमरीका से जंग नहीं चाहते, तो भाई जो है इस मसले का हल क्या है? एक मुल्क आपके मुल्क पर हमला आवर है, एक मुल्क आपके मुल्क की सॉवरेंटी को वायलेट कर रहा है, तो क्या हम उस मुल्क को अपना दोस्त मुल्क डिक्लेयर करेंगे? हमें सीधी तरह चाहिए कि इमरान खान को अगर नहीं पता हो तो मैं कह दूं कि अमेरिका को आप एनिमी स्टेट डिक्लेयर करें, और अमेरिका आप जो है ये बाकायदा जो पार्लियामेंट में जाके सेनेट में जाके पाकिस्तान के सेनेट में इशू उठाएं कि अमेरिका के ड्रोन तैयारों को उस तरह मार गिराया जाए जिस तरह ईरान ने मार गिराया था। उसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान की जो राय आमा मुनकसिम है वो इस वजह से है कि हमारे जो इन सियासतदान नुमा जो शख्सियात हैं इन्होंने एक तरफ यह कह दिया है कि अमेरिका मुर्दाबाद और एक ग्रुप को कर दिया है दहशतगर्द मुर्दाबाद। अगर ये दोनों नारे एक जगह हो जाएंगे तो पूरी कौम इमरान खान के पीछे होगी कि अमेरिका भी मुर्दाबाद और दहशतगर्द भी मुर्दाबाद। ये है इसका जो जाम हल इसका, उसमें नेटो सप्लाई जो है वो एक छोटा सा इशू है। मसला ये है कि जो है सिर्फ नेटो सप्लाई ही एक मसला है कि जिसको हम लेके बैठे हैं। हमें मतलब जो है खारजा पॉलिसी के ऊपर जो है नेशनल सिक्योरिटी की जो हमारी जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी रजा रब्बानी साहब के दौर के अंदर, उसने कह दिया था कि हमें अपनी पूरी फॉरेन पॉलिसी जो खारजा पॉलिसी में यूएस सेंट्रिक है, यानी कि यूएस को हम दोस्त मानते हैं, इसको रिविजिट किया जाए, और जो है उसके नतीजे में कुछ चीजें होनी थी। तो हम जो है अब तक जो है उसी खारजा पॉलिसी को लेके बैठे हुए कि जिसमें अमेरिका जो है यूएस सेंट्रिक जो हमारी जो खारजा पॉलिसी है, और दुश्मनी में हम इंडिया सेंट्रिक है। तो अब जो है खुशकिस्मती से कयानी साहब के दौर में ये बात आ गई कि जो है जो हमारे मुल्क के अंदर मुसल्ला इंतहा पसंदी है ये बहुत बड़ा खतरा है। ये पाकिस्तान की फौजी डॉक्ट्रिन में ये चीज आ चुकी है, तो फौज तो क्लियर हो चुकी है। अब हमारी जो पॉलिटिकल लॉट है उसको ये सोचना पड़ेगा कि वो अमेरिका से किस हद तक दोस्ती पे जाएंगे। अमेरिका के साथ हमारा 2012 का जो ट्रेड है वो सिर्फ $5 बिलियन है, जिसमें हमारी जो है वहां पर एक्सपोर्ट $1.5 बिलियन है, उनकी $3.5 बिलियन है। जबकि मैं आपको बताऊं कि जो पाकिस्तान और अमेरिका की कुल आबादी 50 करोड़ के करीब बनती है, और अमेरिका ईरान और तुर्की 15 दोनों की मिला के 15-16 करोड़ आबादी है, और उनका जो है दो तरफा जो ट्रेड है वो $15 बिलियन है। तो हमें अमेरिका की इस दोस्ती से फायदा क्या हो रहा है? मतलब हर
अमेरिका
को हम ट्रेड में भी सहूलतें देते हैं, खारजा पॉलिसी में भी सहूलतें देते हैं, सिक्योरिटी पॉलिसी में भी सहूलतें देते हैं, और ये हमारी शुरू से जो है।
जी बहुत शुक्रिया आपका। जुबैरी साहब, आपने देखा जहाँ तक ड्रोन हमले की बात होती है, तो जब ड्रोन हमलों का मसला उठता है तो ये कहा जाता है कि इसके खिलाफ पूरी कौम एक है, मुत्तहिद है। पार्लियामेंट में मुश्तरका तौर पर इसका ऐलान भी किया गया, उसकी मजम्मत भी की गई, और मुसलसल हुकूमत की तरफ से इसकी मजम्मत की जाती रही है और अभी भी की जाती है। तो जब ड्रोन हमलों के खिलाफ पूरा मुल्क मुत्तहिद है, तो अब अगर ड्रोन हमलों के खिलाफ कोई इकदाम होता है धरने ही जैसा सही, तो उस पर कौम मुनकसिम क्यों हो जाती है?
हम में से बहुत सारे लोग भाई पाकिस्तान में बहुत सारे हम में मुनाफ़िकत आ गई है, हम हकीकत पसंद नहीं है, हम में वो इस्लाम का वो जज्बा नहीं है जो होना चाहिए था। हमें तो पहले अर्ज कर चुका हूँ कि 59-60 से लेकर हमने अमेरिका की गुलामी जो है अमेरिका ने हमको गुलामी में प्रो दिया था, तो हम कुछ नहीं कर सके। असल बात यह है वही है जो मैं पहले अर्ज कर चुका हूँ कि हमारे हुक्मरान और अवाम जो हैं वो माइल्स अपार्ट हैं। हुक्मरानों की एक भी परसेंट जो है वो इस फेवर में नहीं है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात जो है मुनक़ता किए जाएँ या उनमें कोई दरार डाली जाए, लेकिन अवाम में 1% आदमी वो नहीं हैं जो अमेरिका के साथ खुश हों। तो ये देखें कितना बड़ा तजाद है कौमों में और हुक्मरानों में, इस किस्म का तजाद किसी मुल्क में आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ ये पाकिस्तान की खासियत है। एक तरफ तो हम जनाब अमेरिका के ख़िलाफ़ बोलते हैं, वो कहते हैं ना कि लतीफ़ा अमेरिकन एम्बेसी के पास लोग कह रहे थे अमेरिकन कुत्ते हाय हाय, तो किसी ने कहा भाई दूसरी तरफ से 50 वीज़े मिल रहे हैं यहाँ क्या करें, उन्होंने कतबे वहीं छोड़े और उधर चले गए। हमारा ये तजाद जो है हमें किसी जगह पहुँचाने के लिए तैयार नहीं है। जब अगर अमेरिका खुदा न खास्ता आज अमेरिका पाकिस्तान पर हमला कर देता है या हमारी इमदाद बंद कर देता है, तो क्या हम वाकई ज़िंदा नहीं रह सकते? क्या क्यूबा ज़िंदा नहीं है? दूसरी कौमें जो इनके साथ पंगा लिया है वो क्या ज़िंदा नहीं है? हमारे पास गंदम के ज़खायर इतने हैं कि हम एक्सपोर्ट करते हैं, ब्लैक होती है हमारी गंदम और हमारी चावल और दूसरी चीज़ें। इसी तरह हमारी और बहुत सारी चीज़ें जो हैं, हमारे फ्रूट, मैं अभी पाकिस्तान से वापस आया हूँ, फ्रूट की और सब्जियों की कोई कमी नहीं है, सिर्फ ये है कि इनको दुगनी चुगनी कीमतों पर एक्सपोर्ट किया जाता है और उससे जनाब फॉरेन एक्सचेंज कमाया जाता है, वो भी अमेरिका की ईमाप है। हम खुद अंदर से कुछ किसी तरह किसी तरीके से मुनाफिक हैं। जब तक ये मुनाफिकत नहीं निकलेगी, जब तक आप अमेरिका को कॉल अ स्पेड नहीं कहेंगे, उस वक्त ये मसाइल हल नहीं होंगे। यकीन करें कि अमेरिका दो लड़ाइयों के, बड़ी लड़ाइयों के बाद और दो छोटी लड़ाइयों के बाद इराक और अफगानिस्तान में, अमेरिका इस चीज़ का मुतहम्मल नहीं हो सकता कि किसी तीसरे, अब देखें शाम में क्या हुआ है, हमला करने वाले थे नहीं कर गया, उनको पता चला गया कि अब इस दलदल में और ज़्यादा फंस जाएंगे। तो पाकिस्तान से जिसकी छठी बड़ी आदमी है उस पर हमला करके क्या वो किसी और दलदल में, हाँ ये अलहदा बात है कि हमारे बहुत सारे फौजी जो जर्नैल हैं और उनके जो नीचे जो तबका है वो अमेरिका के किसी न किसी तरीके से गुलाम है, लेकिन फौज, आम फौज जो है उसके जज्बात भी वही हैं जो आपके हैं और मेरे हैं और जितने भी कंट्रीब्यूटर्स आज थे उनके जो जज्बात हैं उनकी तरह है। तकरीबन 18 मिलियन आवाम से उनके
बहुत शुक्रिया
जज्बात मिलते जुलते हैं।
बहुत शुक्रिया फौजिया शाह साहबा, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अभी जब नवाज शरीफ साहब ने अमेरिका का दौरा किया तो उन्होंने अमेरिकी सदर ओबामा से एक बार फिर ये मुतालबा किया कि ड्रोन हमले बंद किए जाएँ, तो उन्होंने करने या ना करने, हाँ या नहीं का जवाब देने के बजाय ये कहा कि पाकिस्तान अपने इलाकों में रीट कायम करे, इसका क्या मतलब है इस जवाब का?
देखिए मेरा अपना ये ख्याल है कि अमेरिका की जानिब से वाज़े तौर पे पैगाम दिया गया है कि वो जो ऑपरेशन करना चाहते हैं, जो वो अपने ड्रोन जिस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं वो करते रहेंगे, क्योंकि अभी हमने देखा कि सरताज अजीज़ जो मशीर हैं फॉरेन अफेयर्स के, उन्होंने ये कहा कि उन्होंने यकीन दिलाया है कि ड्रोन हमले नहीं करेंगे, लेकिन हमने ये देखा कि उनके जिस दिन स्टेटमेंट था उसी दिन एक हमला हुआ था। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, मेरा नहीं ख्याल कि अमरीका को आप किसी तरह भी ये कह सकते हैं कि वो आपकी वो कोई अपनी बात जो है मनवाए बगैर रहेगा। ये कहीं हुकूमत का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट गलत आया कि उन्होंने इसका गलत मतलब लिया है। मैं ये समझती हूँ कि वो वाज़े तौर पे आपका पैगाम था, या तो वो उसकी तरफ से कहा जाता कि ठीक है हम उसको रिविज़िट करेंगे ड्रोन हमलों को, तो फिर तो हम मान सकते थे। मुझे अपने लगता ये है कि उन्होंने ना तो इस हवाले से कोई यकीन दहानी करवाई है, बल्कि ठीक है मेरे ख्याल में प्राइम मिनिस्टर ने ये इशू उठाया, ये बड़ी अच्छी बात है, उठाना चाहिए था, उनको बात करनी चाहिए थी, लेकिन वो एक जब हम उसकी डिटेल्स पढ़ते हैं तो वो एक सरसरी जिसको कहा जाता है वो एक इशू उठाया गया, जिसका उनकी जानिब से कोई ज़्यादा बेहतर रिस्पांस नहीं आया। बाकी जहाँ तक मुल्क में रिट कायम करने की बात है, मैं देखिए अभी बहुत सी बातें आ रही हैं, कुछ ऐसी बातें हैं, एक चीज़ तो हमें बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि हमें आज तक ये जो जंग जिसको कहा जा रहा है, जो पाकिस्तान के हज़ारों लोगों की कुर्बानी ले चुकी है, अरबों रुपए की जो है तबाही मचा चुकी है, अगर इस जंग के हवाले से देखें तो हमारे वो इदारे जिसको ये जंग रोकनी चाहिए तो उसमें भी वो सेंटीमेंट्स पाए जाते हैं जो दूसरे फरीक के करीब हमें दिखाई देते हैं। मेरा ख्याल है कि ये कोई इतनी आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि इस जंग की इब्तदा जो है और जिस जंग को इस्तेमाल किया जा रहा है वो हमारे प्यारे मज़हब का नाम लिया जा रहा है, वो मज़हब की बात उसकी आड़ में जो है ये सब कुछ किया जा रहा है। सबको पूरे पाकिस्तान में ये लोग इस चीज़ को यकीनन जानते हैं कि ये कोई मज़हब का मसला नहीं है, ना ही इसमें किसी किस्म का कोई इस्लाम का ताल्लुक है। इसके बावजूद जो इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जिसको हम दुश्मन भी कह रहे हैं, जिसने पाकिस्तान के स्कूलों को तबाह किया है, पाकिस्तान की मस्जिद को तबाह किया है, पाकिस्तानी आवाम को नुकसान पहुंचाया है, उनके साथ पाकिस्तान की लॉ इन्फोर्समेंट के बहुत ज़्यादा इदारों के जो सरकर्दा लोग हैं वो भी वहाँ दिखाई देते हैं। ये इसका जब जायज़ा लिया जाएगा कुछ अरसे बाद, जब हकायक सामने आएंगे, इसमें हकायक बहुत मुझे बहुत हॉरिबल लगते हैं, गो मुझे बहुत सी चीज़ें सामने दिखाई दे रही हैं लेकिन ज़ुबान जो है वो साथ नहीं देती कि उसका ज़िक्र किया जाए। बहुत सी अगर ये कहा जाए कि कहीं कहीं सरपरस्ती भी होती है, अभी आपने ये देखा कि जैसे इमरान खान का या पहले हमारे इंतखाबात हो रहे थे तो तालिबान की जानिब से जो वाज़े तौर पे एक पैगाम आया कि इनके जलसों में कुछ नहीं कहा जाएगा, ये क्या मकसद था? मियां नवाज शरीफ के जलसों को करने दिया गया और ठीक रहा, उन्होंने ये कहा कि अगर ANP जलसा करेगी या पीपल्स पार्टी जलसा करेगी तो उसको निशाना बनाया जाएगा। ये बहुत से सवाल आते हैं, मेरा ख्याल है कि ये कोई इतनी आसान बात नहीं है कि हम यहाँ बैठ के, और मैं बिल्कुल इत्तफाक करती हूँ जो अभी कराची से बात की जा रही थी कि ये जो इस वक्त सूरत हाल है, जो इमरान खान के हवाले से, इमरान खान की पॉलिसी कभी भी जो है वाजे नहीं हुई। एक तरफ हमेशा उन्होंने जमात इस्लामी को अपना जो है मशीर, या ये कह लें कि उनका मशवरा लेते रहे हैं, दूसरी तरफ जो है वो उन्होंने हमेशा कभी लेफ्ट की बात करते हैं, वो आज तक कभी अपने
बहुत
एजेंडे
शुक्रिया
में,
आपका मोहतरमा,
अपने
बहुत शुक्रिया
जो
आपका,
प्लान में वो कभी मुझे सिंसियर
बहुत
दिखाई
शुक्रिया
नहीं देते।
आपका,
इसमें
बहुत शुक्रिया आपका। हम माजत चाहते हैं कि आपकी बात रोकी क्योंकि वक्त हमारे पास कम बचा है। जनाब इरफान अली साहब, बहुत मुख्तसर सा जवाब चाहूँगा 1.5-2 मिनट में। पाकिस्तान में जब दहशतगर्दी की अभी बात की आपने भी और मोहतरमा फौजिया शाही साहिबा ने भी, कि पाकिस्तान में मस्जिदों, इमाम बारगाहों और पब्लिक मकाम को निशाना बनाया जाता है, जब ये मसला उठता है तो ये कहा जाता है कि चूँकि ड्रोन हमले हो रहे हैं इसलिए ये उसका बदला है। तो ये ड्रोन हमले कबायली इलाकों में होते हैं और उसका बदला कराची में या क्वेटा में या दीगर इलाकों में पाकिस्तान के इस्लामाबाद में इमाम बारगाहों, मस्जिद में और पब्लिक मकामात पर हमला करके किया जाता है, तो ये कौन सी बात है, ये कौन सा फ़लसफ़ा है कि ये बदला लेने का कौन सा तरीक़ा है, और क्या ड्रोन हमलों से पहले दहशतगर्दी पाकिस्तान में नहीं होती थी?
बहुत अच्छा सवाल किया और मैं पिछले दो प्रोग्रामों में इसका किसी हद तक जवाब दे चुका हूं, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा। मैं एक इजाफी बात करूंगा। 2007 में जो इस वक्त जो अमेरिका के नुमाइंदे अफगानिस्तान के लिए जेम्स डॉबिन्स शायद उनका नाम है, इन्होंने 2007 में एक टेस्टिमनी दी थी अमरीकी जो है कांग्रेस को, और उसमें उन्होंने कहा था कि जो है लोग ये कहते हैं कि जो है दुनिया जो है अमरीका की जंग में शामिल हुई तालिबान के खिलाफ। उन्होंने कहा था ये चीज गलत है कि हम जो है उनकी जंग में शामिल हुए। क्यों? अब आप देखें कि चाइना की जो ETIM है, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, ये हसन महसून जो है उनका जो एक आदमी है जो जिनको ये दहशतगर्द कहते हैं अमरीकी मतलब चाइनीज, और वो कहां पर था? वो वजीरिस्तान में था, फाटा के इलाके के अंदर, पाकिस्तान के इलाके के अंदर। उज्बेकिस्तान में एक तंजीम है, इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उज्बेकिस्तान, जुम्मा नमनगानी और जो है ताहरी अल्दोशेफ, ये कहां थे? ये इसी वजीरिस्तान के अंदर थे, पाकिस्तान के इलाके फाटा के अंदर थे, उज्बेकिस्तान। रशिया का जो चेचनिया इलाका है वहां जो लोग जा रहे हैं वो कहां से जा रहे थे? अब आप मतलब जो ये देखें कि जो 9/11 से पहले शंघाई कोऑपरेशन जो बनी थी, जो शंघाई 5 के नाम से बनी थी और फिर बाद में एक्सपेंड हुई और पाकिस्तान उसका ऑब्जर्वर स्टेट रखता है उसके अंदर, और अभी कल परसों जो है सरताज अजीज साहब वहां पे खिताब करके आए हेड ऑफ गवर्नमेंट को शंघाई की, उसमें ताशकंद के अंदर। तो मामला यह है कि जो है ये जंग जो है 9/11 से पहले ये अफगानिस्तान के सारे पड़ोसी और उनके अवाम और उनकी गवर्नमेंट भुगत रही थी। मसलन अमेरिका की इस जंग का सबसे बड़ा मुखालिफ जिसने जो है कोई सहूलत नहीं दी बल्कि उनके जो है
बहुत शुक्रिया आपका,
बिगड़ाया
बहुत
और जो
शुक्रिया
है
आपका,
को उतारा भी, वो ईरान है। क्या जिंदुल्ला कहीं और से अटैक करती है ईरान पर?
जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बात आपकी भी मुकम्मल हो गई और हमारा प्रोग्राम भी मुकम्मल हो गया। हम आप से और तीनों मौजूद मेहमानों से इजाज़त चाहते हैं। नाज़रीन, आपने हमारे मौजूद मेहमानों की गुफ्तगू मुलाहिज़ा फरमाई। जब तक असल का पता नहीं लगाया जाएगा उस वक्त तक मामला हल नहीं होगा। खुदा हाफ़िज़।